नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए संसद के दोनों सदनों में संवाद और कूटनीति को महत्वपूर्ण बताया है। डॉक्टर जयशंकर ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर लोकसभा में कहा कि सरकार ने पिछले महीने की 20 तारीख को स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए एक बयान जारी किया था और सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया था। विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उभरते घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं। वहीं राज्यसभा में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ने इस वर्ष जनवरी में ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी थी और उनसे भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराने और उचित सावधानी बरतने को भी कहा था।
इंडिया इज इन फेवर ऑफ पीस।
भारत शांति के पक्ष में है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से तनाव कम करने का आग्रह करता है। हम संयम बरतते हुए नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के पक्ष में हैं। क्षेत्र में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए हम क्षेत्र के देशों की सरकारों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। हमारे लिए ऊर्जा, सुरक्षा और व्यापारिक हित सहित राष्ट्रीय हित हमेशा सर्वोपरि रहेगा। मुझे विश्वास है कि इस मुद्दे पर सरकार को इस सदन का पूरा समर्थन प्राप्त है।
डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अब तक लगभग 67,000 भारतीय नागरिक देश लौट चुके हैं। कतर में भारतीय दूतावास ने बताया है कि दोहा में अल्पकालिक यात्रा पर फंसे लगभग 1,000 भारतीय पिछले 3 दिनों में कतर एयरवेज की उड़ानों से भारत लौट चुके हैं। दूतावास के अनुसार कतर एयरवेज आज दिल्ली, मुंबई और कोच्ची के लिए 3 उड़ानें संचालित करेगा। सरकार ने तेल रिफाइनरियों को एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने और अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ये कदम ईंधन आपूर्ति में मौजूदा भू राजनीतिक तनाव और एलपीजी आपूर्ति पर लगी पाबंदियों के मद्देनजर उठाया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता दी है। साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए सिलेंडर की 2 बुकिंग्स के बीच का अंतर बढ़ाकर अब 25 दिन कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में आयोजित सबका साथ सबका विकास, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति इस विषय पर आधारित बजट पश्चात सेमिनार के समापन सत्र में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समावेशी और सुलभ शिक्षा को बढ़ावा देती है। उन्होंने इस साल के बजट को शिक्षा, रोजगार, उद्यम, नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहन देने वाला कहा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत का रचनात्मक अर्थव्यवस्था क्षेत्र विश्व के लिए देश की संस्कृति, खाद्य और सीधे स्थानीय विक्रेताओं या आसपास के उत्पादकों से मिलने वाली ताजा वस्तुओं का प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने सबका साथ सबका विकास, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति संबंधी विषय पर आयोजित बजट पश्चात वेबिनार में कल ये बात कही। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रौद्योगिकी मीडिया मनोरंजन के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का नेतृत्व करने में भारतीय सृजकों की मदद के लिए वेव्स मंच का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल केरल और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। दोपहर में प्रधानमंत्री केरल के एर्नाकुलम में लगभग 10,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में लगभग 5,650 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल चुनाव में जीत के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने और आरएसपी के वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह को बधाई दी है। टेलीफोन पर हुई बातचीत में प्रधानमंत्री ने आगामी नई सरकार के लिए शुभकामनाएं दी हैं और दोनों देशों की आपसी समृद्धि, प्रगति और कल्याण के लिए साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई है। एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप 2026 क्वालिफायर में भारत और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।